लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि निकट पूर्व में वार्ता, साक्षात्कार और पुनर्मिलन की भावना उभरे, जहां विविध धार्मिक समुदाय एक साथ मिलकर जीवन यापन करते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। कोई भी देश विदेशियों को नापसंद करने की मानसिकता और नस्लवाद से अछूता नहीं है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। जर्मनी में नाजी शासनकाल में 81 वर्ष पहले कई यहूदी घरों, व्यवसायों और उपासना स्थलों को तबाह कर दिया गया था। इसी की याद में न्यूयॉर्क में यहूदी विरासत के संग्रहालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि जब लोगों पर उनकी नस्ल, धर्म और जाति की वजह से शारीरिक तौर पर या मौखिक रूप से या सोशल मीडिया के जरिए हमला किया जाता है तो पूरा समाज अपमानित होता है। उन्होंने सचेत किया कि नफरत से लोगों के बीच रिश्ते और समाज की नींव कमजोर पड़ती है। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और राजनेताओं से तत्काल कार्रवाई की पुकार लगाई है। उनके मुताबिक छिपे तौर से नफरत को हवा मिल रही है, इसलिए लेकिन उसे प्रत्यक्ष और सामान्य बनाए जाने से रोका जाना होगा। आइए सुनते हैं इसी पर विस्तार से।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जन्म घृणा करने के लिए नहीं हुआ है, इसलिए असहिष्णुता की रोकथाम की जा सकती है और नफरत से प्रेरित सोच का अंत भी। यूएन प्रमुख ने बढ़ते नस्लवाद, यहूदीवाद विरोध और नफरत के अन्य स्वरूपों के विरुद्ध अपनी मुहिम को जारी रखते हुए ये बात कही है। ज्यादा जानकारी के साथ यूएन हिंदी सेवा के प्रमुख महबूब खान।
यूएन महासचिव ने न्यूयॉर्क में यहूदी विरासत के संग्रहालय में गुरुवार को एक समारोह को संबोधित किया, जिसे जर्मनी में नाजी शासन काल में क्रिस्टेनलॉक्स्ट द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास की स्मृति में आयोजित किया गया था। 81 वर्ष पहले 9-10 नवंबर 1938 की रात में कई यहूदी घर, व्यवसाय और उपासना स्थल तबाह कर दिए गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के लिए ये स्मृति समारोह न सिर्फ पीछे मुड़कर देखने का एक अवसर था, बल्कि सतर्क बने रहने की जरूरत को पहचानने का मौका भी। विश्व भर में यहूदियों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए महासचिव ने कहा कि होलोकॉस्ट के कई दशक बाद भी दुनिया की सबसे पुरानी नफरत आज भी हमारे साथ है। हाल के समय में यहूदी कब्रगाहों और होलोकॉस्ट स्मारक को नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा पिट्सबर्ग में पिछले साल एक यहूदी उपासना स्थल पर गोलीबारी की घटना हुई, जिसे अमेरिका के इतिहास में सबसे भीषण यहूदी विरोधी हमला माना गया। यूएन प्रमुख ने आगाह किया कि नफरत के अन्य स्वरूप भी उभर रहे हैं और चर्च में बमबारी, मस्जिदों में गोलीबारी और शरणार्थियों व प्रवासियों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं हुई हैं।
नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 विद्वानों, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डफलो और माइकल क्रेमर को दिया गया। डॉक्टर अभिजीत बनर्जी अमेरिका में एमटीआई संस्थान के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और अनेक देशों में ऐसे प्रयोगों का हिस्सा रहे हैं जिनके तहत गरीब लोगों को कुछ प्रशिक्षण देकर हालात सुधारने का मौका दिया जाता है। आइए सुनते हैं प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी के साथ यूएन हिंदी न्यूज के प्रमुख महबूब खान की एक खास बातचीत।
एक संस्था है, उसके नाम है अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब, जेपैल। उसके तरफ से हम लोग और हमारे जितने साथी एक साथ काम करते हैं, हम लोगों ने शायद लगभग 1000 रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अभी तक कर चुके हैं और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग पॉलिसी जो सरकार और जो संस्थान है वही इन्फॉर्मेशन लेके काम करते हैं, इसलिए हम लोग उस लोगों के साथ काम करते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन ये जो नॉलेज है जो ये काम करता है ये नहीं काम करता है ये इस तरह से काम करता है ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन देते हैं।
जी तो मुख्य तौर पे आप ये बता रहे हैं कि जो गरीबी दूर करने का जो मिशन है या जो चैलेंज है चुनौती है उसमें आपने अच्छा खासा काम किया है, तो ये बताएं कि भारत में कोई इंसिडेंट ऐसा बताएं जहां आपने ये एक्सपेरिमेंट किया और वहां पर गरीबी दूर करने में कामयाबी मिली, और जाहिर सी बात है कोई सफल रहा है तो और देशों में भी लागू किया जा रहा होगा।
एक हम लोग पश्चिम बंगाल में किया था, वो बांग्लादेश में भी उसके एक ही तरह के एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया, हमारे साथी उन्होंने किया और पाकिस्तान में भी किया। गरीबी के दो तरह के थ्योरी होते हैं, एक होता है कि ये लोग अपने आप कामयाब नहीं है और दूसरा होता है कि ये कामयाब है लेकिन इसको मौका नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक जो सबसे गहरी गरीबी जहां है उस तरह के लोगों के लिए साथ ये किया था, जैसे कि मैंने पहले बताया रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रैंडमली जिसको चुना गया है उसको हम लोग ने एक संस्था के साथ जोड़ के संस्था ने उसको कुछ एसेट दिया। एसेट के मतलब होता है कि शायद उनको अगर गाय चाहिए तो गाय दिया, भैंस चाहिए तो भैंस दिया और गिफ्ट के साथ थोड़ा सा कोचिंग भी दिया कि ये इस तरह से करो तो ये ठीक से होगा और इससे आपको फल आएगा। और उसके बाद हम लोग जिनको दिया गया उसको पहले 2 साल बाद, उसके बाद 3 साल बाद, उसके बाद 7 साल बाद और अभी 10 साल बाद उसको देखते हैं कि इसमें क्या फर्क हुआ। जिनको ये मिला वो जिनको नहीं मिला उसे काफी ज्यादा अच्छे इकोनॉमिक तौर पे है, 25-30% ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है अभी भी 10 साल बाद। ये लोग कामयाब थे, सक्षम थे लेकिन उसको मौका नहीं मिलता था, मौका दे दिया तो वो लोग मौका ले लिया और उससे उसको फायदा है। यही एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने करीब मेरे ख्याल से 7 देशों में किया, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, इथियोपिया, गाना, पेरू और होंडुरस। 7ों में एसेट दिया, अलग अलग एसेट था, जहाँ की कुछ देशों में वो एसेट मुर्गी थे, कुछ देशों में वो खासतौर से गाय थे, कैश कहीं नहीं दिया गया।
कि आपने जिक्र किया बहुत सारे देशों में आपने ये एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या कहीं जो इन देशों की सरकारें हैं वो इस चीज को समझ नहीं पा रही हैं या उनमें कोई इंटेंशन या मंशा नहीं है कि जो गरीब लोग हैं उनको इस तरह से मदद करके और बड़े पैमाने पर चलाएं ताकि गरीबी बिल्कुल ही खत्म हो जाए?
देखिए कुछ कुछ ऐसा हो रहा है, इंडिया में झारखंड के स्टेट ये कर रहे हैं, बिहार में भी करने का कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ कुछ स्टेट्स करते हैं। ऐसी नहीं है कि लोग बोलते हैं कि यार नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है वो करना है, तो जितना करना है तो वो अभी तक नहीं हुआ लेकिन फिर भी हो रहा है थोड़ा सा। बिहार ने अनाउंस किया कि 1,00,000 फैमिलीज को ये प्रोग्राम में वो लोग लाएंगे।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिएटा फोर ने भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि वायु गुणवत्ता संकट के स्तर पर पहुंच गई है और क्षेत्र में 62 करोड़ से ज्यादा बच्चे प्रदूषित हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। इस संकट से तत्काल निपटने के लिए उन्होंने असरदार कार्रवाई की एक अपील जारी की है। भारत की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस सप्ताह खतरनाक स्तर पर पहुंच गया और कुछ इलाकों में प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय की गई सीमा से 40 गुना ज्यादा देखा गया।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र संघ रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे, जिन्हें प्रस्तुत कर रहे थे सचिन गौड़। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
मसीहा तू हमको बचा ले, दूर पापों से हमको करा दे।
मसीहा तू हमको बचा ले, दूर पापों से हमको करा दे।
शैतान की जंजीरों से बंधे हैं हमको छुड़ा दे,
शैतान की जंजीरों से बंधे हैं हमको छुड़ा दे।
मसीहा तू हमको बचा ले, दूर पापों से हमको करा दे, करके हमने दामन को अपने बिछाया, चरणों में आकर के हमने दामन को अपने बिछाया।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। वेटिकन में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विश्व कांग्रेस के प्रतिभागियों ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। संत पापा ने एक न्यायिक समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए इस क्षेत्र में कार्यरत सभी लोगों के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि उनकी अनमोल सेवाओं से समाज में मानव मर्यादा के सम्मान को प्रोत्साहन मिला है। संत पापा ने कहा कि हालांकि विगत दशकों में आपराधिक कानून के क्षेत्र में अपराध और सजा के सिलसिले में खुलापन दर्शाया गया है, तथापि इसके बावजूद आपराधिक कानून खुद को उन खतरों से बचाने में विफल रहा है जो हमारे दिनों में लोकतंत्रवाद और कानून के शासन की पूर्ण वैधता पर मंडरा रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने कहा, आपराधिक कानून प्रायः वास्तविकता के आंकड़ों की उपेक्षा कर देता है और इस तरह महज अटकलबाजियों के बाजार रूप में दिखाई देता है। इस संदर्भ में उन्होंने आपराधिक आदर्शवाद के जोखिम के प्रति ध्यान आकर्षित कराया जो समस्या को जड़ से देखने में असमर्थ रहता है। संत पापा ने कहा कि सर्वप्रथम न्यायविदों को आज खुद से पूछना चाहिए कि वे उन घटनाओं का मुकाबला करने के लिए अपने ज्ञान को किस तरह से लागू कर सकते हैं जो लोकतांत्रिक संस्थानों और मानवता के विकास को खतरे में डालती हैं। उन्होंने कहा, ठोस शब्दों में कहें तो हर आपराधिक वकील के समक्ष प्रस्तुत वर्तमान चुनौती दंडात्मक तर्कहीनता को समाहित करने की है जो खुद को सामूहिक कारावास, जेलों की संकुलता और यातना, सुरक्षा बलों की मनमानी और दुर्व्यवहार, बलात् जुर्माना, सामाजिक विरोध प्रदर्शनों का अपराधीकरण, निवारक कारावास का दुरुपयोग और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दंड और उससे संबंधित न्यायिक प्रक्रियाओं की गारंटी का छीना जाना। संत पापा ने इस तथ्य पर गौर कराया कि वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था में प्रायः व्यक्तियों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के अपराध को गौण मान लिया जाता है, जबकि छोटे छोटे अपराधियों के पीछे लगकर न्यायिक निकाय में छिपी खामियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि न्याय संगत समाज के निर्माण के लिए केवल कानून को कुछ ही कमजोर लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता, बल्कि समानता और न्याय के आधार पर सभी लोगों को इस निकाय के नीचे शरण मिलनी चाहिए। थाईलैंड तथा जापान में 19 से 26 नवंबर तक निर्धारित संत पापा फ्रांसिस की प्रेरिती की यात्रा का पदक वेटिकन ने जारी कर दिया है। इस पदक पर पवित्र कुंवारी मरियम और कैथोलिक धर्म के शहीदों की तस्वीर चित्रित की गई है। गुरुवार को पदक जारी किया गया तथा वेटिकन द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति में कहा गया कि कुंवारी मरियम और शहीद संतों ने ख्रीस्त और उनकी कलीसिया के लिए अपना रक्त बहाया। पदक के ऊपरी ओर परम धर्म पीठीय प्रतीक है तथा इसकी दूसरी तरफ थाईलैंड तथा जापान की कलीसियाओं को मां मरियम और शहीद संतों के संरक्षण के सुपुर्द करने का मनोरथ व्यक्त किया गया है। पदक के बाईं ओर स्वर्ग में उठा ली गई मरियम को चित्रित किया गया है, जबकि दाईं ओर माता मरियम को शिशु येसु को लिए दर्शाया गया है। मरियम दक्षिण पूर्व एशियाई देश की संरक्षिका का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें उगते सूर्य के बीच से निकलते चित्रित किया गया है। पदक के केंद्र में क्रूस को दर्शाया गया है जिसके ऊपर एक ताड़ का पत्ता है जो शहीदों का स्मारक है। इस पत्ते पर चित्रित 33 बीज जापान के 26 और थाईलैंड के 7 शहीदों का प्रतीक हैं। जापान के शहीदों में उन कैथलिकों को याद किया गया है जो 5 फरवरी 1557 को नागासाकी में अपने विश्वास के खातिर मार डाले गए थे। इन शहीदों को संत पापा अर्बन ने 1627 में धन्य घोषित किया था तथा 8 जून 1862 को संत पापा पियूस नवम ने इन्हें संत घोषित कर वेदी का सम्मान प्रदान किया था। इनमें यूरोप के 6 फ्रांसिस्कन मिशनरी, 3 जापानी येसु धर्म समाजी तथा लोक धर्मी संत पॉल मिकी और उनके साथी शहीद शामिल थे। थाईलैंड के 7 शहीदों में गकोंग समुदाय की 3 किशोरियां, खाना बनाने वाली महिला अगाता, एग्नेस और लूसिया नामक 2 धर्म बहनें तथा लोक धर्मी फिलिप शिफोंग शामिल थे। 30 वर्ष पूर्व 22 अक्टूबर 1989 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने इन्हें धन्य घोषित किया था। थाईलैंड में इनके आदर में निर्मित पवित्र आराधनालय आज दूर दूर के कैथलिक तीर्थयात्रियों का लक्ष्य बन गया है। विश्व के सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाले देश यानी कि इंडोनेशिया के कैथलिक धर्माध्यक्षों ने गुरुवार को अपनी वार्षिक आम सभा के समापन पर एक संदेश जारी कर अंतरधार्मिक भ्रातृत्व और सह अस्तित्व को इंडोनेशियाई समाज में सुदृढ़ करने का प्रण किया। बांडुंग में संपन्न धर्माध्यक्षीय सम्मेलन की आम सभा के बाद प्रकाशित संदेश में धर्माध्यक्षों ने लिखा, कलीसिया को शांति और परोपकार का प्रसार करना चाहिए, मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए, संवाद, समानता और न्याय को बढ़ावा देना चाहिए, जन सुधार में सुधार लाना चाहिए, वैज्ञानिक विकास पर जागरूकता बढ़ानी चाहिए और विविधता में एकता एवं सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। जकार्ता के कार्डिनल इग्नेशियस सुहारियो तथा धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के महासचिव बांडुंग के धर्माध्यक्ष अंतोनियोस बेंजामिन द्वारा हस्ताक्षरित संदेश कई दिनों तक शांतिपूर्ण इंडोनेशिया के लिए मानव बिरादरी विषय पर मनन चिंतन के बाद प्रकाशित किया गया था। धर्माध्यक्षों ने विशेष रूप से विश्व शांति और सह अस्तित्व हेतु मानव भाईचारा शीर्षक से प्रकाशित आबूधाबी दस्तावेज पर ध्यान केंद्रित किया और इस दस्तावेज के प्रकाश में इंडोनेशिया में चरमपंथी आंदोलनों के अस्तित्व की जांच की। धर्माध्यक्षों ने लिखा, मानव भाईचारे को अपने सभी आयामों में मानव जीवन में अच्छाई लाना चाहिए जो विभाजित दिलों को एकजुट करता और उन्हें एक दूसरे को समझने, एक साथ काम करने और भाइयों की तरह रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्म पीठ के प्रेरित प्रतिनिधि और स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष बेर्नाडितो आउजा ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र संघीय आम सभा के 52वें सत्र में शांति कायम रखने हेतु किए जा रहे कार्यों पर राष्ट्रों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया तथा सार्वभौमिक कैथलिक कलीसिया का पक्ष रखा। महाधर्माध्यक्ष ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में आयोजित शांति कायम रखने की प्रक्रियाओं में पुलिसकर्मियों, सुरक्षा बलों और समुदाय के लोगों का योगदान महान है जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में और विशेष रूप से युद्ध के उपरांत शांति बनाए रखने में मदद प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्य में राजनीतिज्ञों का पूर्ण योगदान होना नितांत आवश्यक है। संत पापा फ्रांसिस के शब्दों को उद्धृत कर उन्होंने कहा, राजनीति मानव समुदाय और संस्थानों के निर्माण का एक आवश्यक साधन है। स्वस्थ राजनीति शांति की सेवा में होती है। यह मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करती तथा उन्हें बढ़ावा देती है। वह व्यक्तियों की जिम्मेदारियों को प्रकाश में लाती तथा वर्तमान और भावी पीढ़ियों के बीच विश्वास और परस्पर समझदारी के बंधन को मजबूत करती है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।